दिन भर 28 दिसंबर दिन शुक्रवार सभी सुनने वालों को मोहम्मद शाहिद का नमस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बनी फिल्म पर विवाद, कांग्रेस ने बताया बीजेपी का खेल।
ये भारतीय जनता पार्टी का खेल है, 5 साल पूरे हो रहे हैं, जनता को हिसाब देना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि रिपोर्ट कार्ड में दूंगा।
वर्षांत कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज कहानी कई बार कैद से फरार होने वाले बिकनी किलर चार्ल्स शोभराज की।
लारपोस टैबलेट बहुत बड़ी संख्या में कस्टर्ड में मिलाया गया और खाना एक फीस्ट किया गया, और इस फीस्ट का माहौल पैदा करने के लिए कई एक बार फीस्ट किया पहले भी इसने, और एक माहौल पैदा किया कि हम फीस्ट करते हैं।
मेलबर्न टेस्ट मैच में भारत मजबूत स्थिति में, होगा ये सब दिन भर में, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर सामने आने के बाद से ही इस पर राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस ने इसे बीजेपी का राजनीतिक प्रचार करने वाली फिल्म बताया है, वहीं बीजेपी ने इससे इंकार किया है। हालांकि बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस फिल्म के ट्रेलर को पोस्ट किया गया है। कैबिनेट ने आज कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को बताया कि बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार से जुड़े पॉक्सो कानून में सजा का प्रावधान बढ़ा दिया गया है। इस कानून के तहत अब फांसी की सजा दी जा सकेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने गगनयान मिशन पर भी मुहर लगाई। गगनयान मिशन के तहत इसरो 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेजेगा। सीरिया की सरकार ने बताया है कि उनकी सेना पिछले 6 सालों में पहली बार उत्तरी शहर मनबिज में प्रवेश करने में कामयाब रही है। सेना ने वहां देश का राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया है। यह घोषणा सीरिया के सरकारी टीवी चैनल पर सेना के प्रवक्ता ने की। ब्रिगेडियर जनरल अली महबूब ने कहा,
बयान القياده العامه للجيش والقوات المسلحه انطلاقاً من
सीरिया में शांति और स्थिरता की स्थिति बनाने के मकसद से सीरियाई सेना लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत मनबिज शहर के लोगों के कहने पर सीरिया की सेना वहां पहुंची है। सीरियाई अरब आर्मी के सदस्य मनबिज में गए और वहां उन्होंने सीरियाई अरब रिपब्लिक का ध्वज फहराया। ये थे सीरियाई सेना के ब्रिगेडियर जनरल अली महूब के शब्द। लीबिया के तट से बचाकर लाए गए करीब 300 से अधिक प्रवासी दक्षिणी स्पेन के तट पर उतरने लगे हैं। ये सभी प्रवासी पिछले हफ्ते लीबिया से चले थे। रेडक्रॉस संस्था के सदस्य इन प्रवासियों की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा स्पेन की चैरिटी संस्था प्रोएक्टिव ओपन आर्म्स ने भी इन प्रवासियों को मदद पहुंचाई है। इस संस्था की प्रवक्ता लॉरा लनुजा ने कहा,
There are 311 persons that we rescued at high seas.
हम पिछले हफ्ते 311 लोगों को 3 अलग-अलग रबर बोट के जरिए बचाकर लाए हैं। रास्ते में इन पर कई खतरे भी आए थे। इन लोगों में 139 नाबालिग हैं, साथ ही कुछ महिलाएं और बाकी पुरुष शामिल हैं। ये सभी लोग कुल 19 देशों के नागरिक हैं, लेकिन अधिकतर लोग सोमालिया से ताल्लुक रखते हैं। ये थे स्पेन की एक चैरिटी संस्था की प्रवक्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तर कोरिया से बाहर निकलने वाले करीब 1000 लोगों का निजी डेटा लीक होने की खबर सामने आई है। दक्षिण कोरियाई यूनिफिकेशन मंत्रालय के मुताबिक ये डेटा दक्षिण कोरिया के पुनर्वास केंद्र के एक कंप्यूटर के हैक होने के बाद लीक हुआ है। ये मंत्रालय दक्षिण कोरिया में लोगों के पुनर्वास से जुड़े मामलों को देखता है। हैकर्स की पहचान और साइबर हमला कहां से हुआ, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। जर्मनी और फ्रांस के नेताओं ने रूस से यूक्रेन के 9 सैनिकों को रिहा करने की अपील की है। एक संयुक्त बयान में एंगेला मर्केल और इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि पिछले महीने यूक्रेन की नौसेना के कुल 24 सदस्यों को रूस ने बंधक बना लिया था। ये लोग नए साल के मौके पर अपने परिवारों से दूर रहेंगे। दोनों नेताओं ने कहा कि 9 सैनिकों को नए साल पर उनके परिवारों से मिलने का मौका दिया जाए। कांगो गणराज्य में राष्ट्रपति पद के एक विपक्षी उम्मीदवार ने प्रशासन पर अव्यवस्था फैलाने के आरोप लगाए हैं। कांगो में रविवार को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। मार्टिन फयुलू नामक उम्मीदवार ने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में चुनाव को इसलिए टाला गया ताकि उनके प्रति जुट रहा जनसमर्थन रोका जा सके। मार्टिन ने जनता से अपील की है कि वे अपने घरों में ही रहें ताकि चुनाव में हो रही देरी के प्रति विरोध दर्ज करवाया जा सके। देश के पूर्वी शहर गोमा में कई जगहों से विरोध प्रदर्शन की खबरें मिली हैं। बांग्लादेश में रविवार को होने वाले आम चुनाव से पहले प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं को धीमा कर दिया है। देश की टेलीकॉम रेगुलेटरी का कहना है कि 3G और 4G सेवाओं को कुछ समय के लिए रोक लगाई गई है ताकि गलत जानकारियों को लोगों के बीच साझा होने से बचाया जा सके।
ये बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं, और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। यूपीए सरकार के दौरान 2004 से 2008 के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू की लिखी किताब पर बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर विवादों में घिर गई है। कल इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। ट्रेलर रिलीज होने के बाद महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस ने कहा कि वो फिल्म को तब तक रिलीज नहीं होने देगी जब तक ये फिल्म उन्हें दिखा ना दी जाए। महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सत्यजीत तांबे पाटिल ने कहा कि फिल्म के ट्रेलर को देखकर लगता है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी से जुड़े तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इसके बाद फिल्म में मनमोहन सिंह की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस फिल्म का भी सम्मान करेंगे।
देखिए, एक्टर का काम होता है एक्टिंग करना, फिल्म वालों का काम होता है फिल्में बनाना, लोगों तक पहुंचाना, और इन संस्थाओं का काम होता है विरोध करना। हाल ही में मैंने राहुल गांधी जी का ट्वीट पढ़ा था जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे उन्होंने बोला था, तो आई थिंक ही शुड, उनको डांटना चाहिए इन लोगों को कि भाई आप गलत बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है, फिल्म बनाई है। विदेश में जब पॉलिटिकल लेवल पर फिल्म बनती है तो उन सब फिल्मों को ऑस्कर मिलते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पर ये डिस्कशन होता है कि इस फिल्म को हम बनाने देंगे, चलने नहीं देंगे, ये गुंडागर्दी थोड़ा चल सकती है।
वहीं कांग्रेस ने इस फिल्म को बीजेपी का खेल बताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने कहा,
ये भारतीय जनता पार्टी का खेल है, उनको मालूम है 5 साल पूरे हो रहे हैं, जनता को हिसाब देना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि रिपोर्ट कार्ड में दूंगा, रिपोर्ट कार्ड देने का जब समय आया तो इधर उधर के मुद्दों में ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। पूरी तरह से जीरो फेल रही है ये सरकार, और 2019 में जनता का क्या फैसला वो पहले से तय।
कल फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद बीजेपी ने इसे अपने ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया। बीजेपी ने ट्वीट में फिल्म को एक ऐसे परिवार की कहानी बताया जिसने देश को 10 सालों तक गिरवी रखा। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस फिल्म पर क्या कहा, जरा सुनिए।
मेरा ये कहना है कि फिल्म के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, जब तक वो कोई कानून नहीं तोड़ा है और नियम के मुताबिक कोई फिल्म बनाया, मेरा उसमें क्या कहना।
ये फिल्म 11 जनवरी को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस था। दिल्ली में जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से फिल्म पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
अब बढ़ते हैं आगे। श्रोताओं, समय है वर्षांत कार्यक्रम का। नेपाल की एक जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे चार्ल्स शोभराज पर भारत, थाईलैंड, नेपाल, तुर्की और ईरान में हत्या के 20 से ज्यादा आरोप लगे। उन्हें सीरियल किलर कहा जाने लगा। भेष बदलने में माहिर और युवा महिलाओं को निशाना बनाने की फितरत की वजह से शोभराज के साथ द सरपेंट और बिकनी किलर जैसे उपनाम भी जुड़ गए। वर्षांत कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज रेहान फजल नजर डाल रहे हैं चार्ल्स शोभराज के आपराधिक जीवन पर।
ये गाना है दुनिया के सबसे शातिर और कुख्यात अपराधियों में से एक चार्ल्स शोभराज के जीवन पर बनी फिल्म मैं और चार्ल्स का। कई हत्याओं के संदिग्ध और दुनिया की सुरक्षित से सुरक्षित जेलों से भागने में माहिर चार्ल्स शोभराज हत्या को उस नाम से नहीं पुकारते जिस नाम से उसे सारी दुनिया पुकारती है। हत्या के लिए उनका अपना शब्द है सफाई, यानी क्लींजिंग। अगर एक पत्रकार रिचर्ड नेविल को दिए गए उनके बयान को सही माना जाए तो शोभराज ने अपने करियर में इस तरह की सफाई यानी क्लींजिंग कई बार की है। इस समय वो नेपाल की एक जेल में हत्या के आरोप में उम्र कैद काट रहे हैं। हाल ही में उनके दिल का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर रामेश कोयराला की एक किताब प्रकाशित हुई है, चार्ल्स इनसाइड द हार्ट ऑफ द बिकनी किलर, जिसमें उन्होंने चार्ल्स शोभराज की शख्सियत से जुड़े कई पक्षों पर प्रकाश डाला है। मैंने डॉक्टर कोयराला से पूछा कि जब शोभराज उनके पास सर्जरी के लिए आए तो उनकी हालत कैसी थी?
वही 70 बरस का एक फ्रेल, बहुत ही फूला हुआ चेहरा, परेशान था, जो सांस लेने में जिसको दिक्कत हो रही थी। ऐसे ही एक पेशेंट सांस था कि पैर बहुत ही फूल गई थी, इसीलिए वो अपनी जूते भी नहीं पहन पा रहा था, वो जूते को स्लीपर की तरह यूज कर रहा था और बहुत ही जल्दी उसकी सांस फूलती थी।
1944 में वियतनाम में जन्मे चार्ल्स सोबराज का आपराधिक जीवन यूं तो 60 के दशक में शुरू हो गया था, लेकिन भारत में उनको पहली बार गिरफ्तार किया गया था 1971 में मुंबई में। चार्ल्स ने मुंबई में एक अपराधी से संपर्क किया, वो उसे लेकर दिल्ली गया, लेकिन वो उसके 2 रिवॉल्वर चुरा कर वापस मुंबई भाग आया। चार्ल्स सोबराज को पहली बार पकड़ने वाले मधुकर जेंडे, जो मुंबई के असिस्टेंट कमिश्नर के पद से रिटायर हुए, बताते हैं।
मुंबई आने के बाद उसने एक रिवॉल्वर उस टाइम 5,000 में बेचा, बोला बहुत अच्छा पैसा मिला, अच्छी बात है। वो दूसरे एक बिजनेसमैन के पास गया कि ये मेरे को रिवॉल्वर बेचना है, बोला मुझे तो पता नहीं है कैसा रिवॉल्वर चलता है, क्या चलता है, हम कैसा लेगा। बोला चलो हम बताते हैं आपको, चौपाटी पे जाएंगे। चौपाटी के बाजू में एसके पाटिल गार्डन है, वहां लेके गया। अभी इसको भी पता नहीं था रिवॉल्वर कैसा चलता है क्या है, तो बताते वक्त उसमें से वो लोडेड था, उसमें से गोली निकली और जो प्रोस्पेक्टिव बायर था उसके छाती में लग गई, वो गिर गया। तो ये समझा कि गया, अभी तो बड़ी आफत हो गई। वहां से भाग के उसे को फिर याद आ गया कि वो अपना वो झेंडे अच्छा आदमी है, अपने को मदद किया था। तो मैं गांधीवी पोलिशन में था, तो दोपहर के टाइम में मेरे पास आया हाथ में रिवॉल्वर, साहब रिवॉल्वर। बोला अरे अजय तुम बैड है, क्या हो गया, क्या लेके कहाँ से लाया? उसने बताया कि साहब ये ऐसा ऐसा बात हुआ और हम उधर गया था, तो आदमी का नाम चार्ल्स सोबराज है और वो लोग इधर एयर इंडिया के ऊपर प्लान कर रहे अटैक करने का। 14 नवंबर के दिन वो चार्ल्स सोबराज सूट पहन के ऐसा रस्ते से जा रहा था, हम टैक्सी में बैठे थे, इसने बताया साहब यही है, तो हमने जाके उसको पकड़ लिया।
मुंबई में चार्ल्स सोबराज के खिलाफ कोई केस नहीं था, दिल्ली में वो अशोका होटल रॉबरी केस कर चुके थे। ये वारदात उन्होंने अशोका होटल में तब की थी जब अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर भारत यात्रा पर आए हुए थे और अशोका होटल में ही ठहरे हुए थे।
अशोका होटल में रहता था, जब भी उसकी कैमरा डांसर है उसको दोस्ती किया और बोला हम तुमसे शादी करेगा। वो नीचे ज्वेलरी शॉप है और ज्वेलरी वाले को बोला हम प्रिंस ऑफ नेपाल है, वो ज्वेलरी देखने के लिए ऊपर भेजो। उसने सब ऊपर भेजा था ज्वेलरी, तो उसको कॉफी में कुछ नशीली दवा डाली, वो बेहोश हो गया। तो उसको ऐसा बेहोश स्थिति में उसको बांध के ये लड़की के लोग भाग गया। भाग जाने के बाद एक ज्वेलर शॉपकीपर देखा अभी तक अपना आदमी नहीं आया, तो ऊपर आया तो दरवाजा बंद था। होटल स्टाफ के पास डुप्लीकेट चाबी होती है, वो चाबी से खोल के उसने देखा तो वो अनकॉन्शियस था। वो होटल के सर्च में उधर एक पासपोर्ट भूल गया था और उसमें चार्ल्स सोबराज नाम लिखा था। तो ताबड़तोब उन्होंने एयरपोर्ट पे मैसेज दिया कि चार्ल्स सोबराज नाम का आदमी है, उसको रोक लो। तो वो उसको वैसा ही वो लड़की को छोड़ के वहां से भाग गया, लड़की और वो ज्वेलरी वहां पे मिल गई। तो जब ही मालूम पड़ा कि चार्ल्स सोबराज नाम का आदमी ये अशोक होटल रॉबरी में इन्वॉल्व है और वही इसमें मिल गया।
लेकिन दिल्ली पुलिस सोबराज को बहुत दिनों तक जेल में नहीं रख पाई। उसने एपेंडिसाइटिस का बहाना बनाया और वेलिंगटन अस्पताल में पुलिस को चकमा देकर एक बार फिर आजाद हो गया। रिचर्ड नेविल और जूली क्लार्क ने वेलिंगटन अस्पताल से चार्ल्स सोबराज के भाग निकलने की रोचक कहानी अपनी किताब द लाइफ एंड क्राइम्स ऑफ चार्ल्स सोबराज में बयान की है।
चार्ल्स ने अपनी पत्नी चैंडल से कहा, डार्लिंग आज रात तुम इन पुलिस वालों के साथ ताश खेलो, इन्हें बातों में उलझाए रखो। बगल के कमरे में बैठे हरे रंग की पगड़ी पहने सिख गार्ड ने चार्ल्स से कहा कि अपनी पत्नी से फ्रेंच में बात मत करो। चार्ल्स ने अंग्रेजी में जवाब दिया, क्या मैं बीवी को गुड नाइट भी नहीं कह सकता? फिर उसने कहा कि आज मेरे डॉक्टरों ने मुझे नींद की गोली नहीं दी है, क्या आप लाइट बुझा सकते हैं जिससे मुझे नींद आ जाए? सिपाहियों ने उसकी बात मान ली। बगल के कमरे में चैंटल सिपाहियों के साथ ताश खेलने लगी। 20 मिनट बाद जब सिपाहियों ने लाइट जलाई तो चार्ल्स सोबराज अपने कमरे से नदारद था।
दिल्ली से भाग निकलने के बाद उसने अपने अपराध करने के तरीके में कई बदलाव किए। सोबराज के व्यक्तित्व की खास बात थी कि अधिकतर लड़कियां उसकी तरफ आकर्षित हो जाती थी।
वो लड़कियों को बड़ी आसानी से फंसा लेता था, उनको कुछ भी बोल के वो लड़कियां उसके ऊपर मरती थी। ऑल ओवर वर्ल्ड क्या करने लगा, वो लड़कियों को घूमने को लेके जाने का हायर कार में फिर नशीली दवा उनको पिलाने का और कोई समंदर किनारे लेके जाने का, और वहाँ पे वो बेहोश हो जाएगी तो उसका सब कपड़ा उतार के, उसका जितना सामान है पर्स बेर सब लेके, उनका घर का पता तो उसको पहले से मालूम करता था, उनपे घर पे जाके उधर से सब चोरी करके दूसरे देश में जाता। आगे उसने क्या किया, फिर लड़कियां होश में आके बोलती थी क्या कौन आदमी है, तो उसने फिर उसको वही कार में का पेट्रोल निकाल के उनके ऊपर डालता था, उसको जला देता था और भाग जाता। ऐसा उसने कम से कम 25-30 औरतों को ऑल ओवर वर्ल्ड मारा।
चार्ल्स सोबराज दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में दोबारा 5 जुलाई 1976 को आया। हुआ ये कि उसने विक्रम होटल में 60 फ्रेंच पर्यटकों के पासपोर्ट लूटने के इरादे से उन्हें ऐसी दवा पिला दी जिससे वो बेहोश हो गए।
तो इन्होंने उनको बोला कि मैं फ्रेंच हूँ, इंडिया का पानी बहुत खराब होता है, आप ये पानी मत पीना, मैं आपको फ्रांस का पानी है मेरे पास वो देता हूँ। वो पानी उनको पिलाया, सबको बेहोश कर दिया। उसका सब सामान निकाल के जमा करता था तो तुली नाम के इंस्पेक्टर दिल्ली के थे, उन्होंने उसको देखा, वो पकड़ लिया। 78 में फिर उसकी पेशी 30,000 कोर्ट में हुई। जब तक तो बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा तो उसको तिहाड़ जेल से कोर्ट में लाने के लिए एक अक्खा प्लाटून यानी एक इंस्पेक्टर और 30 जवान इनकी पूरी एस्कॉर्ट होती थी।
दिल्ली की मशहूर तिहाड़ जेल में उसने कैदियों और जेल अधिकारियों को इस तरह मैनिपुलेट किया कि सब लोग उसके कहने में आ गए। तिहाड़ में सोबराज का इतना रौब था कि लोग उसे चाल साहब कहकर पुकारते थे। कुछ प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि जब वो तिहाड़ जेल के जेलर के कमरे में घुसता था तो वो अपनी कुर्सी उन्हें बैठने के लिए दे दिया करते थे। तिहाड़ जेल से सोबराज के भाग निकलने की जांच करने वाले भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अमोद कंठ बताते हैं,
जेल में एक इसने लोगों का पूरा झुंड बना रखा था जिसके साथ ये काम करता था, पैसे भी लेता था। अपने को ये बड़ा कानून का ज्ञाता समझता था कि ये बहुत ही कानूनची किस्म का आदमी है और बड़ा लॉ पढ़ा रखा है, हालांकि मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। और फिर ये लड़कियों को महिलाओं को बहुत इम्प्रेस करता था, और चूंकि इंटरनेशनल लेवल का क्रिमिनल था, मिक्स्ड पेरेंटेज था, जो हिंदुस्तान में ऐसे लोग पीछे लोग जाते हैं, तो वो सारी चीज़ अंग्रेजी हिंदी ये वो बोलता था। हालांकि इसने कभी हमको इम्प्रेस नहीं किया बहुत ज़्यादा, लेकिन फिलहाल लोग समझते थे ऐसा इसको। तो उस चक्कर में मीडिया के साथ काफ़ी गहरा इसका ताल्लुक था, तो मीडिया के लोग इसके साथ लगे होते थे। तो इसमें वकील भी है, मीडिया भी है, फॉरनर्स भी हैं, ये तमाम लोग शामिल हुए, सभी इसके कॉन्स्पिरेसी के पार्ट हो गए। डेविड हॉल एक बहुत ही मेन इंस्ट्रूमेंटल रहा, जो इत्तफाक से और गलती से यहाँ आ गया था, एक किसी ड्रग्स के केस में पकड़ा गया। और ड्रग्स में चूंकि नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर जो है सजा 10 साल उससे ज्यादा थी, लिहाजा डेविड हॉल को लगा कि वो तो निकल नहीं पाएगा। इसने कुछ मेडिकल पेपर्स बना के कुछ और तरीके से अंदर बाहर करके इसने जो है डेविड हॉल को निकलवा दिया। डेविड हॉल के मन में इसके लिए कोई सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन होगा, इसने मदद इसकी की और लगातार मिलता रहा। और जेल में इसने ऐसा माहौल पैदा कर दिया था कि वहाँ के जेलर्स, वहाँ के सुपरिटेंडेंट, वहाँ के तमाम लोग इसके बड़े गहरे दोस्त थे। जैसे जेलर के कमरे के बगल में एकदम पूरी जगह बना ली जहाँ पे इसने सिंगर के साथ रासलीला मनाता था, और वहाँ पे हर ढंग का काम ये करता था, इसकी प्रेम मोहब्बत तमाम चीज़ें वो अपना कर रहा है जेलर्स के सुपरविजन में।
तिहाड़ जेल से भाग निकलने में चार्ल्स सोबराज का साथ दिया कुख्यात अपराधियों ब्रजमोहन, लक्ष्मी नारायण और राजू भटनागर ने, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी एक अंग्रेज अपराधी डेविड हॉल की। 10 साल की सजा काट रहे डेविड हॉल को सोबराज ने 12,000 रुपए की जमानत पर छुड़वा दिया। हॉल ने जेल के बाहर रहकर सोबराज के भागने का पूरा इंतजाम किया।
जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा था तो डेविड हॉल ने कोई 500 लारपोज के टैबलेट कैंप एंड कंपनी जो कनॉट प्लेस का है वहां से उसने खरीदे। फॉरेन एक्सचेंज का उसने इंतजाम किया जो कि पैसे ट्रांसफर हुए बाहर से, और इसके पास पैसे बहुत आए कहीं ना कहीं से। और गाड़ियों का इंतजाम किया गया कि कैसे वो एस्केप करेगा, गाड़ियां वहां होंगी ऐसा डिसाइड हुआ, राजू भटनागर वगैरह उसमें काफ़ी एक्टिव थे। और फिर ये फैसला किया इन लोगों ने, प्लान किया कि ये लोगों को जितने भी जेल के लोग मौजूद होंगे सबों को स्टुपिफाई करके यानी उनको ड्रग्स डाल के खाने के बीच में डाल करके और इनको बेहोश कर देंगे और निकल जाएंगे, और यही किया इन लोगों ने। लारपोज टैबलेट बहुत बड़ी संख्या में कस्टर्ड में मिलाया गया और खाना एक फीस्ट किया गया, और इस फीस्ट का माहौल पैदा करने के लिए कई एक बार फीस्ट किया पहले भी इसने, और एक माहौल पैदा किया कि हम फीस्ट करते हैं। उस क्रूशियल डे पे भी इसने खाने का पूरा इंतजाम कर रखा था और कस्टर्ड बनवा रखा था, उसमें लारपोज टैबलेट डाल करके एकदम स्ट्रॉन्ग ड्रग बना दिया गया उसको बेहोश करने वाला, तमाम लोगों को खिलाया और हर आदमी बेहोश हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे के सारे प्रोसेस की फोटोग्राफी डेविड हॉल कर रहा था।
सोबराज दिल्ली से भागकर पहले मुंबई और फिर गोवा पहुंचा। सुराग मिलने पर मुंबई पुलिस के कमिश्नर जोग ने मधुकर जेंडे को सोबराज को पकड़ने के लिए गोवा भेजा। जेंडे 15 साल पहले सोबराज को पकड़ चुके थे। उन्हें टेलीफोन एक्सचेंज से सुराग मिला कि चार्ल्स वहां के ओकोकेरा होटल में आ सकता है।
हम दिन भर मोटरसाइकिल ढूंढते थे और शाम के टाइम ओकोकेरो में जाके बैठते थे। अभी प्लेन क्लोज में सब लोग थे, अभी क्या बोल तो नहीं सकते हम कौन है क्या है, ऐसा ही कुछ भी। दिन भर बैठने का 7 बजे से रात को 11 बजे तक पहले बिरयानी मंगाओ, फिर फिश मंगाओ, फिर परोठा मंगाओ, ऐसा कुछ भी करके पेट भर खाके तो 5 दिन तो गए। 6 अप्रैल को शाम को 10:30 बजे हिंदुस्तान पाकिस्तान की हॉकी की मैच टीवी पे चल रही थी। होटल का बड़ा कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर ऐसा एक बैठने ऊपर जगह है और उसके अंदर एक इनर रूम है। तो इनर रूम में हम बैठे थे, हम देखा कि वो गेट के बाहर से एक व्हाइट टैक्सी से 2 आदमी उतरे और उन्होंने अपनी सन हैट पहनी थी। बोला इतना रात में आदमी सन हैट क्यों पहनता है, क्योंकि मैं ऐसा होता देख रहा था गौर से। जैसा वो आगे आगे आने लगा तो मेरे को तो लगा ये चार्ल्स सोबराज ही दिखता है। तो मैं उठ के वो सब ऑफिसर को छोड़ के चुपचाप बाहर गया कंपाउंड के बाहर अपना वरांडा में। उधर देखा जैसा आया वो उसके साथ वो डेविड हॉल उसका एक यूरोपियन फ्रेंड, वो दोनों आके होटल के वरांडा के उधर एक टेबल पे बैठ गए। मेरा तो छाती धड़धड़ करने लगा, मैं ताबड़तोब टेबल पे बैठ गया बरोबर उसके पीछे। फिर वो एक इसको बुलाया, वेटर को बुलाया, उसपे एक भरा भरा ताबड़तोब एक नोट लिख के दिया कि अंदर जो ऑफिसर, उसको बोला मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, अंदर जो बैठे सब पुलिस वाले हैं, तो उनको ये जाके मैसेज देना कि 2 लोग बाहर जाके वो टैक्सी अभी बाहर रुकी है, उसको ड्राइवर से इंक्वायरी करना और 2 लोग कंपाउंड में रहना, 2 मेरे बाजू में मेरे मदद के लिए आना।
सारी तैयारी हो जाने के बाद जेंडे ने आगे बढ़कर सोबराज को धर दबोचा।
मैं उतनी जगह से उठा और जाके पीछे से उसको एकदम घट पकड़ के चिल्लाया चार्ल्स, पर कैसा पकड़ा है तो वो तो हूँ चार्ल्स, तो मैं बोला यू आर ब्लडी चार्ल्स सोबराज, बोला नो आर यू क्रेजी, डोंट फॉरगेट आई एम दी सेम जेंडे वर्ड कॉट यू इन 71। ऐसा बोलने के बाद उसकी तो हिम्मत टूट गई। वो दूसरा ऑफिसर था उसने डेविड हॉल उसके पाव को उसने एक बड़ा चाकू बांधा था, वो निकालने की कोशिश की तो ऑफिसर ने जाके पकड़ा। हमारे पास तो कोई हैंडकफ वगैरह नहीं लगे गए थे, हम पता नहीं था कि हम पकड़ सकेंगे। तो होटल वाले को बुलाया, भाई आपके पास जितनी भी रस्सी बिस्सी है हमको देना, उसको अच्छा तरह से बांध दिया। तो मैं होटल वाले को बोला मेरे को कमिश्नर साहब का नंबर उसने जोड़ के दिया। मैं साहब को बोला साहब हमने सोबराज को पकड़ा। बोले क्या बोलते हो सच्ची, बोले साहब 100% पकड़ा। बोले आई एम वेरी वेरी हैप्पी, तुम ऐसा करो उधर से डायरेक्ट निकलो, हाँ डोंट वेट फॉर गोवा पुलिस, यू स्ट्रेट वे कम।
जेंडे से सोबराज की कस्टडी दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर अमोद कंठ ने ली और वो उसे एक विशेष विमान से दिल्ली ले आए।
ये आप समझिए कि वो कितना इम्पोर्टेंट आदमी बन गया था कि हमने स्पेशल एयरक्राफ्ट BSF की ली और टीम के साथ मैं बॉम्बे गया और बड़े मुश्किल से मैं उसको लेके आया बॉम्बे से और ला करके फिर कस्टडी में रखा। काफी बाद में जाके एक इंटरेस्टिंग बात मेरे साथ हुई और इन लोगों के साथ कि डेविड हॉल की वाइफ जो थी एक नर्स थी और वो बहुत घबराई हुई थी। डेविड हॉल खाना नहीं खा रहा था, तो मेरी वाइफ जनरली खाना बना के देती हैं तो मैं लंच बैग्स लेके चलता हूँ। एक दिन इंट्रोगेट कर रहा था मैं दोनों को। डेविड हॉल को मैंने जब फूड अपना दिया, शेयर किया उसके साथ पराठा जो मेरी बीवी ने बनाया था, तो डेविड हॉल थोड़ा इमोशनल हो गया। इमोशनल होकर के वो घबरा के कुछ बोला तो मैंने उसकी वाइफ से उसकी बात करा दी, वो काफ़ी ओबलाइज्ड हुआ और उसके बाद वो इतना बोलने लगा कि एक एक चीज़ बोल गया। वो लगातार 5 घंटे बोलता रहा और एक एक कहानी उसने बोल दी इसकी पूरी।
जेल से भाग निकलने के कारण सोबराज की सजा बढ़ गई, इसकी वजह से उसका थाईलैंड प्रत्यर्पण रुक गया जहां उसे वहां की गई हत्याओं के लिए शर्तिया मौत की सजा मिलती। अमोद कंठ को सोबराज को इंटरोगेट करने का सीधा अवसर मिला था।
देखिए इसकी आदतें बड़ी खराब है, लोगों ने इसको काफी पैम्पर किया। मैंने पहला काम किया कि मैंने जमीन बिठाया इसको, मैंने कहा तुम्हारी जगह यहाँ पे है, मैं चेयर पे हूँ तुम नीचे हो, तो ये थोड़ा डिमोरलाइज्ड हुआ और मैंने इसको ऑर्डिनरी लोगों के समान ट्रीट किया। देखिए 3rd degree वगैरह की मेरी आदत भी नहीं है, मैंने एक से एक बड़े केस किए हैं, राजीव गांधी केस से लेके ललित पान के अर्जुन दास केस, हवाला केस, ट्रांजिस्टर बॉम्ब ब्लास्ट केस, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन मेरा विश्वास है और तभी तमाम बातें खुल के सामने आई। तो इसका जो अप्रोच था वो आपको किसी को भी एक बहला देना, मैंने ये मौका इसको नहीं दिया कि हमको बहला दे, क्योंकि मेरा भी गहरा विश्वास इस आदमी के बारे में था कि नहायत ही नामाकूल किस्म का, गंदे किस्म का और मिस्चिवस कैरेक्टर है। और जो आदमी, मैंने बहुत सारे क्रिमिनल्स और लोगों ने, टेररिस्ट वगैरह हर ढंग के लोगों को हमने हैंडल किया है, हर्षद मेहता से लेकर के और जनरल अद्या के किलर्स तक के मेरे कस्टडी में रहे हैं, लेकिन ये आदमी सिंगल आउट इसलिए होता है कि ये रियल कमीना था।
तिहाड़ जेल से छूटने के बाद चार्ल्स ओब्राज पहले फ्रांस गया, जहां उसने भारी राशि के बदले पत्रकारों को इंटरव्यू दिए। 2003 में वो नेपाल आया, जहां पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर रामेश कोयराला बताते हैं,
2003 में वो लगभग 190 कंट्रीज थे, उसमें एक ही कंट्री में उसके ऊपर चार्ज लगे थे, एक्टिव चार्ज था, और बाकी दुनिया में कहीं पर भी नहीं था। और वो अच्छी जिंदगी जी रहा था, ऐसे बोलते थे कि फ्रांस में, तो ऐसे आदमी को नेपाल में क्यों आना पड़ा।
12 जून 2017 को डॉक्टर रामेश कोयराला ने चार्ल्स ओब्राज की बाईपास सर्जरी की। पहले तय था कि सर्जरी 4 घंटे तक चलेगी, लेकिन ये पता चलने के बाद कि उसका एक और वॉल्व खराब है, सर्जरी 1 घंटे और चली।
हार्ट सर्जरी में क्या होता है, शुरू से अंत तक एक ही सर्जन काम नहीं करता है। मैं अब जैसे कि ये मेरा केस हुआ, तो शुरुआत कोई करेगा और मेन काम जो है वो मैं करता हूँ, और उसके बाद फिर उसका जो सीने की जो हड्डी होती है वो सिलाने के काम दूसरे लोग करते, मेरे जूनियर लोग करते, इसीलिए शायद 4-5 घंटे की केस टोटल केस होगा, 4 घंटे 5 घंटे लग गया होगा। मेरा काम शायद 1.5-2 घंटा का था।
सर्जरी के बाद सोबराज ने डॉक्टर कोयराला से पूछा कि इनके आईसीयू में कितनी पलंगे हैं। कोयराला ने जवाब दिया 36। सोबराज ने कहा कि वो फ्रेंच दूतावास से कहेंगे कि वो उनके अस्पताल को 36 मेजें दान में दे दे।
He's a type of self-obsess, और उसमें एक हिसाब से एक फीलिंग ऑफ ग्रैंडियोज था, इसीलिए जहाँ तक मुझे लगता है कि वो अपने आप को बहुत सुपर समझता था, तो वो अपने जवानी में इसी तरह से मीठी मीठी बात करके शायद लोगों को फंसाता होगा ऐसे ही। क्योंकि उसमें क्या था कि जब से मेरे से मिला, बोलता है कि मैं ये हूँ, वो हूँ, मैं बहुत फेमस हूँ, मेरा ऑपरेशन करने के बाद तुम्हें भी वो बहुत ज्यादा फायदा होगा, सारा दुनिया से ऑपरेशन करने के लिए नेपाल आएंगे, ऐसे ऐसे कुछ बोलता था। तो ऐसे वो बोला कि जब अब जैसे आईसीयू में हम ऐसे, ये तो कोई होटल नहीं हुई कि हम वो जो बेड साइड टेबल होता है ना, जो ऐसे कि खाना खाने के लिए जो होते कि बेड में ही रख के खाना खा ले, ऐसे टेबल तो नहीं होता है। तो फिर उसने बोला कि ऐसे टेबल क्यों नहीं है, मैंने ऐसे ऐसे टेबल देखा हूँ, तो तुम्हारे यहाँ जितना बेड है उतना टेबल मैं डोनेट करा दूंगा। तो मेरे को ये एक जो क्रिमिनल जिसका पूरा ऑपरेशन गवर्नमेंट कर रहा है, उसको 1 रुपये पे नहीं पे कर रहा है, और वो हमें बोल रहा है कि वो हमें डोनेट करेगा, हम ही डोनेट कर रहे हैं उसको, ये तो बड़ा अजीब बात हुई थी, इसलिए मैं हंस दिया था थोड़ा सा।
क्या चार्ल्स को अपने किए पर कोई पछतावा है? इसका जवाब खुद चार्ल्स ने अपने जीवनीकार रिचर्ड नेविल और जूली क्लार्क को दिए गए इंटरव्यू में किया था।
अगर कोई मुझसे पूछे कि इतने लोगों को मारने के बाद मुझे किसी तरह का पछतावा या दुख महसूस होता है, तो मेरा जवाब होगा, क्या एक पेशेवर सैनिक को अफसोस होता है जो अपनी मशीन गन से सैकड़ों लोगों को मार देता है? क्या अमरीकी पायलटों को पछतावा हुआ था जब उन्होंने मेरी मातृभूमि पर नापाम बम गिराए थे? समाज हमेशा सैनिकों द्वारा की गई हत्याओं की ये कहते हुए अनदेखी कर देता है कि उन्हें लोगों को मारने का अधिकार है, ये उनका कर्तव्य है, क्या मुझे इस तरह के अधिकार नहीं मिलने चाहिए?
चार्ल्स ओब्राज में अब वो फुर्ती और तेजी नहीं रही जो 25 साल पहले हुआ करती थी। इस समय उनकी उम्र 74 साल की है और वो अभी भी नेपाल की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। रेहान फजल, BBC दिल्ली।
रेहान फजल की इस प्रस्तुति में तकनीकी सहयोग दिया देवाशीष कुमार ने। ये आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखें। मेलबर्न टेस्ट के तीसरे दिन भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मजबूत स्थिति में है। सुनिए मैच रिपोर्ट राखी शर्मा से।
मेलबर्न टेस्ट के आज तीसरे दिन भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह छाए रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उन्होंने सिर्फ 33 रन देकर 6 विकेट लिए। बुमराह की गेंदबाजी का असर रहा कि ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी सिर्फ 151 रन पर ढेर हो गई। हालांकि आज का दिन भारतीय बल्लेबाजों के लिए भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। दिन का खेल भारत की दूसरी पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 54 रन पर खत्म हुआ। क्रीज पर मयंक अग्रवाल 28 और ऋषभ पंत 6 रन बनाकर नाबाद हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 346 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। इससे पहले तीसरे दिन के खेल में भारतीय गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया पर हावी रहे। 6 विकेट लेने वाले बुमराह ने अपने टेस्ट करियर के पहले साल में सबसे ज्यादा विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने अपने डेब्यू साल में अब तक कुल 45 विकेट झटक लिए हैं।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला रविशंकर कुमार ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आएं हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।